ओम शांति। बाबा की बगिया के रूहानी गुलाब मोहन सिंगल भाई जी हमारे बीच में आए हैं। हम एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप 62 में विद्यार्थी काल से ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 63 में मास्टर डिग्री प्राप्त की, 67 में एमटेक की मास्टर डिग्री प्राप्त की। आप इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद ओएनजीसी में ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे। भारत के लगभग 20 शहरों में आपने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया है। भारत में असम, गुजरात, बिहार आदि में अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी आप बने। आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया है। भारत केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्री जी के हाथों पर्यावरण श्री की उपाधि आपको दी। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स डेवलप किया, अनेक अभियानों का संचालन किया। आपने यूएसए तथा यूके में भी इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। आपको 2013 में ग्रीन आइडल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साइंटिस्ट व इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं, हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। विंग्स ऑफिस में 18 विंग्स की गतिविधियों को सुचारू रूप से आप देखते हैं। आपको साकार मम्मा बाबा की पालना लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। साकार बाबा जब अव्यक्त हुए उस दिन साकार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाई गई अंतिम मुरली क्लास के सौभाग्यशाली भी भाई बहनों में से एक आप भी थे, तो वह अनुभव भी थोड़ा हम सुनेंगे। बाकी आज का विषय आपका है माया के रॉयल रूप और उन पर विजय कैसे प्राप्त करें। आदरणीय भ्राता श्री मोहन भाई जी,
ओम शांति। बाप दादा, हम बच्चों को रोज मुरली में ज्ञान की बातें नए नए ढंग से बताते रहते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत काफी नई नई बातें हैं बताई। कोई आप लोगों को लगता हो, याद हो, तो बताएं कौन सी ऐसी बात जो आपको लगती हो कि अभी तक नहीं सुनी वो बात, या बाबा ने नई रीति से बताई है, तो ऐसी कोई बात ख्याल आती है आज की मुरली में? क्योंकि लौकिक दुनिया में तो स्वार्थ माने गलत समझते हैं कि जो अपने ही इंटरेस्ट में होता है, दूसरे की परवाह नहीं करता, भाई ये बहुत स्वार्थी है कहते हैं ना, यानी कि अपने तक ही सीमित है। लेकिन बाबा ने और उसका आज क्या नया अर्थ बताया? स्व माने आत्मा, और उसके अर्थ कोई बात, और क्या नई बात बताई बाबा ने? हाँ, ये भी जैसे आज के विषय के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आज का विषय क्या है, टॉपिक क्या है आज का? माया के रॉयल रूप, अच्छे रूप। क्योंकि अगर कोई बात वो ही रूप में आती है तो उसमें सफलता सहज ही मिल जाती है। बचपन में आप बहने भी होंगे, बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे, घर में आपको रोटी बनाना सिखाया होगा, तो पहली बार में क्या गोल गोल बन गई थी? नहीं बनी होगी, और चिपक भी गई होगी और कई मुश्किलात आई होंगी। और अभी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि बस उधर बात भी करते रहेंगे किसी से और चकला बेलन हाथ काम करता रहेगा, अपने आप ही वो बनती रहेगी प्रैक्टिस अभ्यास। तो इसीलिए अगर माया भी उसी पुराने रूप में ही हमेशा आती रहेगी ना, तब तो माया से हारने की बात ही नहीं रहेगी हमारी कभी, क्योंकि माया इसको बहुत बहुत बार जीता होगा, तो इसलिए माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेन बात यह है कि माया के भी बहुत नए नए और भिन्न भिन्न रूप होते हैं, और केवल मोटे रीति से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वगैरह नेगेटिव रूप जो होते हैं उस रूप में ही अगर आती रहे माया, तब तो हम माया से कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि इतने सालों में हर एक को 10 20 50 60 साल हो गए होंगे ज्ञान में, और भी ज्यादा हो गए, तो उस पर तो विजय पाने का प्रैक्टिस हो गई। लेकिन माया के आज कुछ ऐसे रूपों पर भी कुछ विचार करेंगे जो माया के कौन से रूप होंगे, सूक्ष्म रूप, रॉयल रूप, और ऐसे रूप जिस रूप में माया जो है हम समझते नहीं है कि ये माया है, लेकिन एक्चुअली वो माया के ही रूप होते हैं। आप सब भी बहुत अनुभवी बैठे हुए हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तो माया का यही हमारा शरीर जो है यही एक ऐसा स्वरूप है, क्योंकि जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहली बात जो बताई जाती है कि भाई हम सब आत्मा हैं और ये शरीर जो है ये शरीर के ही संबंधी हैं, लौकिक माता पिता भाई बहन आदि आदि संबंधी, तो वो सब लौकिक और अलौकिक रूपी में जब बाबा ने बताया कि भाई ये सब तो लौकिक संबंध है, एक जन्म के संबंध है, वास्तव में हम सब आत्मा है, और उस रीति से हम सब ने अलग अलग रीति से अलग अलग जन्मों में अलग अलग माता पिता अलग अलग भिन्न भिन्न नाम रूप में संबंध निभाए, तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि हमें पता भी चल गया कि अब ये लौकिक इस जन्म के ये माता पिता, अलौकिक और पारलौकिक जो बाबा ने बताए, तो इसीलिए वो अलौकिक और पारलौकिक जो माता पिता हैं वो सब जो हैं उनका और लौकिक का फर्क भी पता चल गया। फिर भी क्या होता है, एक तरफ बाबा कहता है कि लौकिक जो है ना इन सब को भूलो, भले पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में संबंध है लेकिन उनको भूलो, लेकिन दूसरी तरफ जो अलौकिक संबंध है, जो बाबा ने कहा ये अलौकिक भाई बहन है, और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक शिव बाबा आदि आदि ही ये सब संबंध भी बाबा ने बताए हैं। लेकिन लौकिक को तो हम भूलने का प्रयास करते हैं, भूल भी जाते हैं थोड़े समय में। भूलने का मतलब कि उनको हम उनके साथ भले रहें लेकिन उनके साथ अटैचमेंट और लगाव झुकाव वो नहीं होता, क्योंकि जब बुद्धि में आ जाता है कि ये हमारे एक जन्म के ही संबंध निभाने के लिए है, तो एक तरफ तो वो हो जाता है। दूसरी तरफ अलौकिक जो भाई बहन है, अलौकिक परिवार है, अलौकिक सारे संबंध है जो बाबा ने बताया, तो वो अलौकिक में हम कभी कभी हमारी बुद्धि फंस जाती है। तो ये है एक तो माया का बड़ा ही सूक्ष्म जो है स्वरूप, क्योंकि लौकिक को तो भूले लेकिन अलौकिक में अगर फंसे फायदा क्या हुआ, फंसना तो फंसना ही है। वो अलौकिक में शुरू में आते हैं, बस अलौकिक परिवार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लौकिक दुनिया से ना दूर होके आते हैं, उसमें सब स्वार्थ है लौकिक दुनिया में, वो पहचान जाते हैं हम, और अलौकिक परिवार बहुत बहुत अच्छा लगता है सब परिवार, क्योंकि निर्विकारी होते हैं, सबका संबंध जो होता है एक शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, और जो ये अलौकिक परिवार है आपस में होता है। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, कई बार समय के साथ साथ ये अलौकिक परिवार में भी ना हमारा मन भेद, मतभेद, परमात, कई सारी चीजें आ जाती हैं जो बाबा ने बताया। तो इसीलिए वो आने से क्या होता है, जब इतना भेदभाव दिल दूर हो जाता है, तो आप सबने भी देखा होगा, भले दादी जी अक्सर करके एक बात बताया करते थे कि जो डिफरेंस कई बार हो जाते हैं, कोई कोई भाई बहन बहुत अच्छे लगते हैं, लगाव झुकाव उनके साथ, क्लास के बाद भी बहुत देर तक बात करते रहते हैं, आदान प्रदान विचारों का होता रहता है, लेकिन कई ऐसे हो जाते हैं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से, किसी ने कोई चुगली कर दी या कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी, गलतफहमी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सामने से भी आ रहे होंगे, है वो ही हमारा दैवी परिवार, वो ही कुछ महीने कुछ वर्ष पहले तक बहुत प्रेम स्नेह से हम आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन अभी सामने से भी आ रहे होंगे, वो उधर से निकल जाएंगे, हम इधर से, आपस में ओम शांति भी नहीं होती, हेलो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई माया का ना ऐसा रूप, सुहाना रूप लगता है, जानते हैं दैवी परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमें लगता है कि अब हमारे और इनके बीच में उतना स्नेह संबंध नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो ये भी माया का एक ऐसा रूप है वास्तव में, जिसको कि हमें पहचानना आना चाहिए, क्योंकि माया के कई ऐसे रूप होंगे जिनको हम पहचान नहीं पाते। भक्ति मार्ग में भी बहुत बोलते हैं, बताया है आप सबने को भी होगा, श्री रामचंद्र सीता रामचंद्र जी वनवास गए, जो भक्ति में सुना है कहानियां, और सीता जी भी गए, लेकिन साथ में जाने के बाद भी वो कोई न कोई, सबसे पहले तो स्वर्ण मृग को ही नहीं पहचान, सारा सब कुछ छोड़ दिया, राम के साथ साथ जंगल में चले आए, सारा हीरे जवाहरात जो सोना पहना हुआ था सब छोड़ दिया, लेकिन स्वर्ण मृग के पीछे वो हो गए। उनको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि बस ये स्वर्ण मृग है, मुझे ये चाहिए, और वो भेज दिया उन्होंने वहां पर रामचंद्र जी को कि ये मुझे ये स्वर्ण। सबने कहानियां सुनी है, तो वास्तव में ये सब हमारी ही यादगारें हैं कि हम सब ने बाहर की दुनिया का खान पान छोड़ दिया, बाहर की दुनिया का जो लौकिक की बातें हैं संबंध, उन सब को भी भूलने लगे, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अंदर आकर के हम कहीं ना कहीं माया के उस सुहाने रूपों को पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए पहला तो यह है ही है जो बताया आपको कि हम लौकिक दुनिया में तो भूलने का प्रयास करते हैं, भूल भी जाते हैं, लौकिक माता पिता भाई बंधु सका जो भी लौकिक होते हैं कि भाई ये एक जन्म के हैं, पार्ट बजाने के लिए हैं, अब बस इतने समय के लिए नाता है। लेकिन अलौकिक के साथ क्या होता है, उसमें जैसे कि हम किसी के साथ अति स्नेह हो जाएगा, किसी के साथ अति मनभेद हो जाएगा। तो इसीलिए ये है माया का नया रूप। क्यों? क्योंकि माया के रूपों को पहचानना बहुत आवश्यक है। बाबा ने अभी भी बताया हुआ है, हाँ, प्रेम स्नेह अच्छी चीज है, सबके साथ स्नेह होना चाहिए, लेकिन स्नेह का संस्कार जो है, ये संस्कार ऐसा है कि स्नेह हो सबके साथ, लेकिन वो स्नेह ऐसा हो, कैसा होना चाहिए वो स्नेह, किसी के साथ भी ना टू मच लगाओ झुकाओ या वो नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो संस्कार हमें ले जाने हैं, उस संस्कारों को हमें अभी ही धारण करना है, तो इसीलिए माया के इस रूप को भी पहचानना बहुत बहुत जरूरी है कि माया का ये रूप कि मानो किसी के साथ हमारा अति लगाव हो और किसी के साथ थोड़ा मनभेद हो, तो ऐसे में तो सतयुग में तो चलेगा नहीं, क्योंकि सतयुग में जाएंगे वहां तो किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ हमारा बिल्कुल भी प्रेम ना हो। मनभेद यहाँ पर हो जाते हैं, आपस में ओम शांति नहीं होती, बोलचाल नहीं होती, और कई बार ऐसा हो जाता है कि पर चिंतन पर निंदा जो बाबा ने कई बार बोला है ना, परमात उन सब में आ जाते हैं। तो इस कारण से फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि सतयुग में तो ये संस्कार लेके जा नहीं सकते, जाएंगे वहां पर तो वो सतयुगी क्या रहा, उसे भी हम लोग कलयुग बना देंगे सतयुग में भी अगर यही संस्कार रहा। तो इस कारण से वहां जब सतयुग में जाने से पहले यहां पर हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, अंतर्मुखी होकर के अपने को टटोलना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सतयुग में तो सबके साथ बड़ा प्रेम का स्नेह का संस्कार होगा, किसी से भी डिफरेंस होंगे ही नहीं। तो इसीलिए यहां पर अगर हम समझते हैं किसी के साथ किसी भी कारण से हमारा उनसे बोलचाल उतना मधुर नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उनके साथ अपने अहम को, अपने ईगो को, अहंकार को, अक्सर करके क्या होता है, हम सोचते हैं भाई मेरा उनसे मतभेद है, बोलचाल ठीक नहीं है, मैं क्यों बोलूं उनसे, पहले वो बोले मुझसे। वो सोचते हैं कि पहले ये बोले, क्योंकि अहम वो टक्कर खाता है। तो अक्सर करके दादी यहां बताती थी, बाबा यज्ञ में भी इतने 350 रहते थे, मनभेद मतभेद क्या नहीं होते होंगे आपस में, इतने सारे भाई बहने जब रहते थे तो बाबा बुला के भी कहते थे अपने अहम को शांत करके, अपने अहंकार को दबा करके उनके पास जाऊं, आओ भाई जी या आओ बहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमारे बीच में बहुत अच्छे स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण संबंध थे, अभी उतनी अच्छी नहीं है, आइए हम लोग बैठ करके ना, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात है, आपको किसी ने कोई गलत शिकायत की है, या मुझे आपके बारे में किसी ने कोई गलत बोला है, आइए हम लोग बैठ करके उस बात को निपटा लें, खत्म कर लें, क्योंकि सतयुग में तो ये संस्कार लेके जाएंगे नहीं, और सतयुग में इसलिए ये संस्कार को हमें यहाँ ही खत्म करना जरूरी है। तो इसलिए अपने अहंकार को सूक्ष्म में अहम हो तो भी हम उसे दबा के खत्म करके इस बात को, तो माया के इस रूप को भी पहचान लें कि ये माया का जो रूप है ना, ये बहुत ऐसा रूप है जो हमें सतयुग में प्रथम जन्मों में बहुत साधारण पद दिला देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हमने खत्म नहीं किया संस्कार यहाँ पर, तो सतयुग में तो साधारण पद पा लेंगे, भले कलयुग अंत तक जाते जाते कुछ थोड़ा बहुत ऊंच पद पा लें, लेकिन सतयुग के पद और कलयुग के पद में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो इस कारण से हम किसी भी तरह मिल करके उन बहन भाई को, भले हमारा अहम बोलेगा मैं क्यों बोलूं, लेकिन नहीं, मुझे किसी भी तरह करके अपने इस संस्कार को खत्म करना है। तो ये माया का जो रूप होता है अक्सर करके, इससे थोड़ा सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए साथ में, माया का क्या रूप होगा, जो बाबा ने कहा है, ये शरीर बाबा ने कहा है, शरीर की क्या बोला आज, संभाल करनी है। तो शरीर की संभाल करनी आवश्यक इसलिए है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि कर्मातीत हमें इसी शरीर में ही बनना है। इस बारे में मैं एक बहुत गुह्य बात आपको मम्मा की सुनाता हूँ। मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा था या 64 में, मतलब मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ के मामा गए सूक्ष्म वतन में, आत्मा मामा की, शरीर तो यहीं रख था मामा का। तो जब मामा गए वहां, तो वहां पर सूक्ष्म व वतनवासी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तब प्रजापिता तो ब्रह्मा बाबा तो यहीं थे, 69 तक हम लोगों के साथ रहे और 65 में मामा ने शरीर छोड़ा मानो। तो मामा ने जब शरीर छोड़ के वहाँ गए तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने, बाबा ने पूछा कि बच्ची कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो? तो मामा ने सोचा, फिर मामा ने कहा नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया, क्योंकि कर्मातीत अवस्था का अनुभव अर्थात शब्द ही कर्मातीत, कर्मों से अतीत, यानी कर्म भी करें लेकिन कर्म से भी एकदम न्यारे हो गए। तो ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं करा तो बच्ची फिर यहाँ क्यों आए हो? कि बाबा सुख परम धाम में अपनी सीट पर जाने के लिए आपने कहा है कि आत्मा पहले परम धाम जाएगी, थोड़ा समय रुकेगी, उसके बाद सतयुग में आएगी। बात भी सही है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची परम धाम तब तक नहीं जा सकते, कब तक? जब तक कर्मातीत नहीं बने। और आज भी बाबा ने बोला कि इस शरीर में ही कर्मातीत बनना है, ये ही संगम युगी शरीर है हमारा। तो इसीलिए इस शरीर से कभी भी वैराग जैसा नहीं आना चाहिए। वैराग का मतलब, वैसे तो शरीर से तो वैराग करना ही है, बेहद का वैराग, लेकिन इस शरीर को मुझे कोई ना कोई चीज का मेरे जीवन में अभाव है, धन की कमी है, या बीमार है शरीर, या मन बड़ा हलचल में रहता है, मन जो है जो बाबा चाहता है वैसा मन अचल अडल नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है? तो यहाँ पर जो है मुझे क्या बनना है, बाबा ने बताया कि परम धाम अपनी सीट पर मैं तब जा सकूंगी जिस स्थिति में मैंने शरीर छोड़ा था, जिस सीट पर मैं विराजमान थी परम धाम में, जो मेरी ओरिजिनल सीट है, यानी कि बहुत उच्च से उच्च अवस्था, कर्मातीत अवस्था जैसे। तो उसी अवस्था में जब तक मैं यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं कर लेती, उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उस अवस्था में मैं नहीं जा सकती। तो बाबा ने कहा ममा को कि ममा जाओ, कर्मातीत अवस्था का आपने अनुभव नहीं किया है, तो अभी आपका शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, ये हिस्ट्री हॉल, तब तो वही था, ये सब तो कुछ था नहीं। तो वहीं पर ही बाबा भी आवाहन कर रहे थे मामा का, क्योंकि पहले तो यही सोचते थे हम सब को इकट्ठे ही जाना है, बाबा मामा और हम सब बच्चे इकट्ठे परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे अपने अपने समय के प्रमाण, और उसके बाद पार्ट बजाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, हिस्ट्री हॉल में तुम्हारा शरीर रखा है, जाओ और उस शरीर में प्रवेश करके तुम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ और फिर आके यहाँ बताओ। ममा को नीचे भेजा, ममा की आत्मा को। ममा नीचे आई, काफी समय तक ममा नीचे रही, और नीचे ममा बहुत समय तक रहे। उसके बाद जब ममा ऊपर गए तो बाबा ने कहा बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो ममा ने कहा नहीं बाबा, मैंने तो अभी भी नहीं किया। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा ही इसीलिए था कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। कि बाबा मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं नीचे गई और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर तो हलचल में था ही नहीं, मृत हो गया था, कोई भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था शरीर, इसीलिए मैं शरीर में जब प्रवेश ही नहीं कर सकी तो प्रवेश करूं तब तो कुछ कर्म करूं और तब कर्मातीत स्थिति का अनुभव करूं, लेकिन जब मैं शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकी तो इसीलिए मैं कर्मातीत स्थिति का अनुभव ही नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, चूंकि कर्मातीत अवस्था का अनुभव तुमने इस शरीर में नहीं किया है, इसीलिए अब तुम्हें जाके जाओ, दूसरा शरीर लो, नए माता पिता के पास जाओ, पार्ट बजाओ, फिर पुरुषार्थ करो, कर्मातीत स्थिति की अवस्था तक पहुंचो, और उसके बाद फिर जब कर्मातीत अवस्था का अनुभव करोगी तब फिर तुम अपनी सीट परम धाम में जा सकोगे। तो देखो, ममा ने जब शरीर छोड़ा अपने ही शरीर में भी प्रवेश नहीं कर सके। तो बाबा ने कहा बच्चों को, सबको कहना, बताना कि अपने इस अंतिम शरीर से कोई भी कभी परेशान ना हो, कंटा लेना, क्या करूं, बीमार शरीर है, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, धन का अभाव है, धन अगर होता तो और धन लगाते सेवा में और ऊंच पद पाते, और कोई भी तन मन धन संबंध का अभाव है, कोई परिवार वाले नहीं चलते, जो भी कोई ना कोई अभाव ड्रामा अनुसार बच्चों में है ही है, कोई ना कोई अभाव। क्यों? क्योंकि वो अभाव के कारण ही पेपर आता है, और वो पेपर जब आता है तभी पेपर में पास होने का पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ में तीव्रता आती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कभी भी इस तन से, ये तन आपको पूरे कल्प में सबसे अच्छे से अच्छा तन ये ही मिला है। अच्छे से अच्छे का मतलब, वैसे स्थूल रीति से तो सत्ययुग त्रेता में 16 सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा माने इस ही तन में हम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और किसी तन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये संगम योगी ब्राह्मण भगवान का चुना हुआ ये तन है। हम तो भक्ति मार्ग में भगवान को बहुत ढूंढते रहे नहीं मिला, लेकिन संगम पे आके भगवान ने हमें कहां कहां से ढूंढ लिया और चुन लिया, और चुन के बाबा ने ये तन दिया। तो इसीलिए अगर इसमें कोई कमी भी है तो बिल्कुल इस कमी के बारे में कुछ मंथन, कोई विचार नहीं, वो कमी नहीं है, बल्कि थैंक्स टू बाबा कोई ना कोई चीज की कमी है, अभाव है, तो वो मुझे संपूर्ण बनाने के लिए है, मुझे इस तन में ही। आज भी बाबा ने मुरली में बोला इस तन में ही कर्मातीत बनना है, आज की मुरली में सुना होगा ना, तो इस तन में ही कर्मातीत बनने का भाव यही है। और इसीलिए बाबा ने कहा, तो बोलेंगे कई के मन में विचार होगा, जब शरीर छोड़ दिया तो इस तन में तो कर्मातीत बने नहीं, इसीलिए बाबा ने उसका वो कहा है कि जितना योग युक्त रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, अपने को खाली याद नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, तो क्या होगा, उतना ही फिर कर्मातीत अवस्था के निकट जाएंगे और कर्मातीत बन सकेंगे। तो इसीलिए अभी क्या करना है, हमें इस शरीर में ही याद में योग में ज्यादा रहना है और योग में रह करके आयु को लंबा करना है, जिससे जितनी आयु लंबी होती जाएगी बढ़ती जाएगी वो बढ़ती जाएगी आयु, और आयु बढ़ने से ज्यादा पुरुषार्थ कर सकेंगे, ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। इसमें हमें याद आता है जानकी दादी की एक बात। जानकी दादी ने ना क्या करा कि एक बार मधुबन से आए थे, वो विदेश से आए थे और मधुबन में आने के लिए, और आप सब जानते हैं 31 दिसंबर को तो बाबा हमेशा आते ही हैं, नया साल का दिन होता है, अगले दिन से नया वर्ष लगता है। तो दादी आए, लेकिन अहमदाबाद में लोटस में आए, दादी की तबीयत खराब हो गई, कुछ ज़्यादा खराब हो गई, तो मधुबन तक भी नहीं आ सके। तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया सब तरफ से कि भाई कुछ उम्मीद नहीं है, तबीयत दादी की बहुत खराब है, सीरियस है, और डॉक्टर भी जवाब दे रहा है आप सब लोगों को भी जो भगवान को याद करना, और डॉक्टर तो उसी हिसाब से बोलेगा, बोला। तो यहाँ पर बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाबा, तो अव्यक्त बाप दादा ने वो जब मुरली बाबा की पूरी हो गई तो निर्वैर भाई और बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा से मिले और बोला बाबा जानकी दादी की तो तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, ये है 31 दिसंबर और पिछला मिलेनियम ये खत्म हो रहा था, यानी कि कौन सा दिन बोलेंगे, 31 दिसंबर और 1999, उसके बाद तो 2000 शुरू ही हुआ, तो इसीलिए 2001, 2, 3 और 26 तो चल रहा है अब। तो बाबा ने कहा कि देखा बाबा ने, और बाबा ने बोला नहीं बच्ची उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, जानकी दादी को बोला। तो देखो उस टाइम दादी की इतनी तबीयत खराब हो गई, अब बाबा ने बोला कुछ नहीं होगा, अभी तो उसे बहुत सेवा करनी है, प्रकृति जीत आत्मा है। तो देखो उसके बाद 20 साल तक, 2020 तक दादी जान की सेवा करते रहे, एक दो साल भी नहीं, 20 वर्ष तक, और ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा आयु। बाबा की कितनी आयु में बाबा ने शरीर छोड़ा था, 93 में, और जानकी दादी ने 104 वर्ष की आयु। तो ये प्रकृति जीत बनने की बात है। तो हम सब भी कर्मातीत का मतलब क्या है, कर्मातीत का मतलब हम आत्मा भी पवित्र बने और शरीर भी पवित्र, प्रकृति जीत बने। इस रेफरेंस में मैं अपना एक वो सुनाना चाहूंगा अनुभव, क्योंकि वो उससे इजी हो जाएगा आपको समझना। जब पहली बार हम बाबा से मिले, बाबा पहले तो सब जगह जाते थे, बाबा भी मामा भी, और तो बाबा कानपुर में आए हुए थे, हम लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे, तो लखनऊ से कानपुर 2 घंटे का ही रास्ता है। कानपुर में बाबा आए हुए थे तो लखनऊ वालों ने तय किया कि चलो बाबा से मिलने जाएंगे, एक दिन डिसाइड किया बस में, सब लोग बाबा से मिलने वहाँ पहुँचे कानपुर में। तो कानपुर पहुँचने के बाद वहाँ पर ना बस हम तो तब बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे, 16, तो बाबा के पास लास्ट में ही नंबर आया। पहले सब बड़े लोगों का जो प्रवृत्ति वाले थे और ज़्यादा एज वाले थे उनका नंबर आया, लास्ट में लगभग हमारा नंबर आया। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाबा तुम्हारी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तो हमने सोचा कि आने में देर हो गई, लखनऊ से कानपुर आने में शायद इसीलिए बाबा बोल रहा है बहुत समय से। तो हमने तो उस हिसाब से बोला कि हाँ बाबा, कि नहीं नहीं दादियों ने भी बताया। फिर बाबा, नहीं बच्चे, कलप पहले से बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है, बच्चे बाबा पूछा करते थे। तो एक्चुअली हमारा लौकिक नाम है श्री, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोलते हैं ना, तो इस तरीके से हमने बताया बाबा श्री ऐसा है और सरनेम ये सिंगल है, तो श्री। तो बाबा ने कहा श्री, अच्छा क्या बोला बच्चे, फिर से बताया बाबा को कि श्री। ओ श्री, आओ आओ दादी। तो बाबा बड़े जॉली स्वभाव के भी थे, और यही विश्व महाराजन का लक्षण होता है कि बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, जिससे उन्हें लगे कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। क्योंकि हर एक को लगता था बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो बाबा को जब बताया हमने, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने को श्री नहीं लगा सकता, तो तुम तो ब्रह्मा बाबा से भी एक कदम आगे हो गए। जॉली स्वभाव के बाबा के बच्चे, क्योंकि हम भी एकदम 16-17 साल यंग थे, तो बाबा ने उस हिसाब से जस्ट बोला। तो ये बोल करके फिर बाबा ने कहा बच्चे अब तुम्हें श्री जैसा बनना है। श्री उन्हीं को लगा सकते हैं, किनको लगा सकते हैं श्री, देवी देवताओं को, श्रेष्ठ, जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी। तो ना अभी आत्मा पवित्र है सतयुग से आते आते पतित बन गई, और न शरीर, शरीर तो है ही विकारों की उत्पत्ति। तो इस कारण से आत्मा और शरीर, इन दोनों को पवित्र करना है, और जब ये दोनों पवित्र होते हैं उन्हीं को श्री लगाने का अधिकार है। अभी तो ब्रह्मा बाबा भी श्री नहीं लगा सकता। तो इस तरह बाबा ने ज्ञान के आधार पर बताया भी, और अब तुम्हें श्री जैसा बनना है, यानी आत्मा को भी पवित्र करना है और शरीर के इन पांच तत्वों से बने शरीर तत्वों को भी पवित्र करना है। तो अब तुम्हें आत्मा और शरीर को पवित्र करना है, इसीलिए तब श्री लगा सकेंगे। अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है। तो बाबा ने नाम भी बदल दिया। ये भी हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने इस, केवल हमारा ही नहीं, आप सोचोगे अरे हम लोग तो तब यज्ञ में थे ही नहीं, नहीं तो शायद बाबा हमारा नाम भी बदलता। वास्तव में बाबा ने सभी का नाम बदला है। आपका नाम क्या बदला है? पुराना नाम रूप ये सब कुछ याद न रहे, और ये नया ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बस भगवान ने सभी का नाम बदल दिया। तो इस रीति से बाबा ने, तो अभी बताने का मतलब भाव क्या है कि अभी हम सब आत्मा को पवित्र बनाना है, शरीर को भी पवित्र बनाना है। ये पांच तत्वों का बना हुआ जो पुतला है शरीर, यानी कि आत्मा को तो हम रोज पवित्र बनाते ही हैं, रोज अमृत वेले भी योग करते हैं, सारा दिन भी यथा संभव जितना हो सकता है, रात को सोते समय भी बाबा को याद करके सोते हैं, ये सब तो है ही है। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें इस पांच तत्वों से बने शरीर को भी पावन बनाना है। क्योंकि अगर ये शरीर पावन जो है, बिल्कुल पांच तत्व पवित्र नहीं हुए, तो तत्व तो पांच तत्वों से सतयुग आदि से पहले जन्म से लेकर ये अंतिम जन्म तक बना तो शरीर इन्हीं पांच तत्वों का ही है। तो इसीलिए भले अलग अलग समय पर कभी सतो प्रधान होते हैं तत्व, फिर सतो रजो तमो होते होते अब अंतिम में ये तमो प्रधान है। तो इस कारण से बाबा कहता है कि ये तत्वों से बना शरीर भी जो है ना, ये इन तत्वों को भी पावन करना, तो ये भी माया का एक वो है कि हमें किसी न किसी रीति से अपने इन शरीर को, ये तत्व तो पतित नहीं है, पतित शरीर है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, क्योंकि अंतिम समय हमारा लास्ट में लास्ट पेपर कौन सा है, ये शरीर का पेपर, अंतिम पेपर, पूरे जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से पेपर अलग अलग सबके आते ही हैं, संबंधों के आते हैं, धन का आता है, तन का, मन का, संबंध, कई प्रकार के पेपर, लेकिन लास्ट में लास्ट पेपर ये शरीर का है। कब, क्यों, क्योंकि जब आत्मा ये शरीर छोड़ के जाएगी ना, वही लास्ट पेपर है। ये शरीर आसानी से आत्मा को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतने समय 40, 50, 60, 70, 80, 90 जितनी भी आयु है हर एक की, उतने समय तक शरीर ने आत्मा को बांध के रखा है, या कहे आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही है ना। इस कारण से हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ये आत्मा जो है बड़े सहज रीति से मक्खन से बाल की तरह निकले। कैसे निकलेगी, ब्रह्मा बाबा का भी आप सबने सुना है ना कि बाबा का जब अंतिम ये था, बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा आपको क्या अनुभव हुआ जब अंतिम समय आप शरीर छोड़ रहे थे, उस समय आपको क्या अनुभव हो रहा था, क्योंकि शरीर तो हम सबको छोड़ना ही है, इस शरीर के साथ तो जाना नहीं सतयुग में। तो इस कारण से शरीर जब छोड़ेंगे हम सभी, तो अंत समय में बाबा ने अनुभव सुनाया था जो 18 जनवरी को बाद 13 दिन तक बाबा का भोग लगा था ना, उनमें जो नहीं वो तो लिया, बाबा से पूछा, छठा या सातवां 13 दिन तक भोग लगा, तो एक दिन संदेशी जब गई तो पूछा कि बाबा आपको अंतिम समय क्या अनुभव हो रहा था, तो बाबा ने डिटेल में बताया कि अंतिम समय बच्ची कर्म भोग का और योग बल का युद्ध चल रहा था। तो वो चलेगा हम सबका भी, क्योंकि योग बल जो है वो तो हम यथासंभव कमा ही रहे हैं, यथासंभव हर एक, लेकिन कर्म भोग तो हमारा 63 जन्मों का है ही है, इतना कड़ा कर्म भोग है। तो एक तरफ कर्म भोग, और वो ही बाबा ने कहा बच्ची अंत समय कर्म भोग का, हाँ बाबा को हार्ट पेन हुआ, और वो भी मैं आपको जस्ट बताऊं कि अंतिम दिन का ना, एक हमें ये भी सौभाग्य मिला कि बाबा का ना 17-18 जनवरी को, यद्यपि हम आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पास करने के बाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो आईआईटी है, आईआईटी से हमने पास किया था 1967 में, जब बाबा थे, बाबा ने ही वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। तो वहाँ पर जब गए तो उसके बाद पढ़ाई करके बाबा ने ही आसाम भेजा, जाओ बच्चे, हमारी दिल नहीं थी आसाम जाने की ज्यादा, क्यों, क्योंकि न कोई सेंटर था, न कोई गीता पाठशाला थी, न एक भी भाई बहन था, कोई भी नहीं था पूरे आसाम में। आसाम क्या, जो 7 स्टेट है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, अगरतला है, ये सब नागालैंड है, पूरी सातों स्टेट में एक भी भाई बहन नहीं था। और हमें तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्चे ONGC ज्वाइन करो, ये फील्ड वहाँ बाबा तुम्हें भेजता है। मैंने कहा बाबा वहाँ तो कोई भी भाई बहन है नहीं, कैसे हमारी पालना होगी वो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पालना तो बाबा ने कई साल कर ली, ये अब तुम्हें जाके वहां पर आसाम में पालना करनी है। तो देखो भगवान का दृष्टिकोण कितना दूर का होता है, तो दूर दृष्टा। तो इस तरह बाबा ने भेजा और वहां पर जाके, तो जब बाबा तो वहां पर थे तो 17 जनवरी को हम मधुबन पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हमें जाना था तो देहरादून जो हेडक्वार्टर होता था ONGC का, जहां पर कि हम सर्विस करते थे। लेकिन हमने बाबा को लिखा, बाबा ने कहा ठीक है बच्चे वहां तो जाओ, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ, इमीडिएटली। तो बाबा ने बुला लिया और हम बस बाई प्लेन आसाम से पहले कलकत्ता गए, फिर दिल्ली, और उसके बाद अपने लौकिक पिताजी के साथ वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद ये वहां पर देखा, हाँ उस जगह 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए, तो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी। तो बाबा ने भी बताया कई रीति से कि कैसे माया के ना सूक्ष्म रूप भिन्न भिन्न। पहले बाबा हमेशा मिलते, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, बस हाथ फैला के बाबा जैसा चित्र देखते हैं ना, बस बाबा आवाहन करते थे, हम सब लोग पहुंच जाते थे बाबा की बाह में, फिर बस विदेही हो जाते थे अशरीरी। फिर बाबा थोड़ा हाँ करते थे, बुलाते थे, जैसे आत्मा कोई शरीर छोड़ के तो जाती नहीं, लेकिन विदेहीपन का अनुभव होता था। तो आत्मा जब ये अनुभव करती थी तो फिर उसके बाद बाबा के बाह में जाके हमें भी बिल्कुल एकदम ऐसा विदेहीपन का अनुभव होता था। तो जब हम 17 जनवरी को मधुबन पहुंच गए सुबह, तो बाबा की कर्मातीत अवस्था, तो इसमें ही माया के वो सूक्ष्म रूप भी समाये हुए हैं, गौर से सुनना आप। तो इसके अंदर पहली बात, हमेशा तो बाबा पूछते थे आओ बच्चे कुछ पूछना है, हम पूछते थे बाबा उत्तर देते थे। लेकिन 17 और 18 जनवरी को बाबा से जब मिले, तो बस बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि दे के बाबा ने कहा कि बच्चे, बिल्कुल बाबा हृदय के अंतर उतर गए, मन के अंदर। ये पूछने आए हो, बाबा ने ये नहीं पूछा हाँ बच्चे क्या पूछने आए हो, नहीं, बाबा ने तुरंत बताया बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो ये कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण है। और माया से भी ना, वो क्या होगा, अंतिम समय में हम लोगों की भी ऐसी ही अवस्था होगी। हमारे सामने लोग आएंगे जो हम लोगों ने बाबा के सम्मुख अनुभव किया, बाबा एकदम दृष्टि देते ही मन का हाल पढ़ लिया, बस यही स्थिति हम लोगों की भी होगी कि जब अंत में हम कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो लोग हमारे सामने आएंगे बहुत इच्छाएं लेकर अंत समय। और जब वो आएंगे तो आते ही बस हम दृष्टि देंगे, उनके मन का हाल पढ़ करके उनको मन को उसका उत्तर मिल जाएगा, जो प्रश्न लेके वो लोग कोई भी आएंगे। बहुत सब प्रकार के, बाबा ने कहा अंत समय में लोग आएंगे, बहुत दुखी आत्माएं आएंगी, आपके सम्मुख आते ही दृष्टि लेके समाधान पा करके सुख का अनुभव करके चली जाएंगी। अशांत आत्माएं आएंगी, शांति की स्थिति का अनुभव करके आएंगी। रोती हुई आत्मा आएंगी, बस हंसते हुए चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो बाबा की स्थिति हम लोगों ने अनुभव की, हम लोगों के द्वारा भी लोगों को उसी स्थिति का अनुभव करना है। और ये कब होगा? जब हम लोगों का अंत समय ये पार चलेगा, जब हम किसी के अंदर की बात को समझ सकेंगे। तो ये कर्मातीत अवस्था की पहली निशानी। दूसरी निशानी, कोई भी काम हमें पेंडिंग न रहे। क्यों ये इस निशानी बता रहे हैं? क्योंकि ये अवस्था आएगी तब हम दूसरे के मन की बात को पढ़ ही तब सकेंगे, जब हमारे अपने मन के अंदर कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, तब हम दूसरे के मन की बातों को पढ़ सकेंगे। तो ये होगा अंतिम समय की बात। तो बाबा की दूसरी बात क्या देखी? चार बातें खास बाबा की देखी। दूसरी बात, बाबा पहले तो पत्र लिखा करते थे, आपने देखा भी होगा शायद, लाल लाल पेन से बाबा का पत्र लिखते थे और काफी डिस्टेंस पर दो लाइन होती थी, उसके बीच में नीले अक्षर से ईशु दादी जो बाबा की पिए थी वो हिंदी में लिखते थे, क्योंकि बाबा तो सिंधी में पत्र लिखते थे। तो ये दूसरा, वो क्या होगा? हमारा कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। अगर एक भी बात पेंडिंग रही, पेंडिंग माने बची हुई, अक्सर करके हम लोग टाल देते हैं ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं, अभी जो करना है सो हम करके बाबा को उसका ऐसा अपॉर्चुनिटी दें। बाबा ने जैसे हमारे हृदय के अंदर उतर करके हमारी बातों को पढ़ करके समाधान दिया, वो ही अवस्था अंतिम समय हम बच्चों की बननी है। क्यों? ब्रह्मचारी तो बन गए, अब ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी माने ब्रह्मा बाप के समान। तो ब्रह्मा बाप जब हमारे मन की बातों को पढ़ लिया, ये बहुतों का अनुभव है, तो यही अवस्था हमारी होगी अंत में। जो हमारी प्रजा आएगी, जो भक्त आएंगे, आत्माएं आएंगी, बस हम दृष्टि देंगे उन्हें और दृष्टि देके उनके मन की बात को पढ़ के उसका समाधान कर देंगे। तीसरी बात बाबा की, उस दिन बाबा ने ना जो अंत समय है, बस बाबा ने उस दिन सुबह क्लास नहीं कराई थी, बाबा ने कहा रात्रि क्लास। ये सब बातें आपने सुनी होंगी, इनकी इतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि अंतिम समय में हमारी ये अवस्था होनी है, हमें अपनी मृत्यु का आभास हो जाएगा, हम ये शरीर छोड़ने वाले हैं। लोगों को नहीं होता, कोई सडनली चले जाते हैं, बाबा का भी ना, बस जितनी भी बातें बाबा ने पेंडिंग काम थे वो बचे हुए थे, वो बाबा ने उसी दिन पूरे किए। 17 और 18 जनवरी को नक्की लेक का म्यूजियम का मकान लिया, वो भी पूरा किया उस दिन। बाबा ने उस दिन क्लास सुबह नहीं कराई थी, शाम को बाबा ने कहा सब भोजन करके आना और उसके बाद बाबा क्लास एक घंटा पहले कराए। रोज 9 बजे 8:45 क्लास होती थी, उस दिन बाबा ने 8:45 क्लास कराई। तो ये इस बात का प्रतीक है कि बिल्कुल जो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया वो ही अनुभव हम और आप सब करेंगे। कभी ये ना सोचे अरे बाबा तो बाबा ही था, बाबा ने किया लेकिन हम लोग ने नहीं, हमें करना है, क्योंकि ये समय के साथ साथ ये अनुभव करते हुए भी तो माया के सूक्ष्म रूपों को अब पहचानने की जरूरत है। वो रूप जो चीजों को हम सोचेंगे हमने छोड़ दिया, ये विकार तो अब इतना समय हो गया, 10 साल हो गया, 15-20 साल इस विकार पे तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वो ही सडनली एकदम ऐसा एरप्ट होगा एकाएक ही। इसीलिए बाबा कहता है कोई भी विकार का ना अंश मात्र भी ना रहे, अंश अगर रहा तो वंश पैदा हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये सब जो माया के जो नए नए रूपों में कोई भी चीज जो आप समझते हैं, अरे अब जैसे अभी क्या समझते हैं कई बार, अरे ये मशीन का बना खाना है, मशीन में तो कोई उसकी बात नहीं होती है, चलो बाहर का खा ले। शुरू में ये इसमें तो कोई विकारी मनुष्य का हाथ नहीं लगा है, लेकिन ये ही माया का एक बहुत सुहाना रूप है। बिल्कुल ऐसे ऐसे जो अंदर की बात हम समझेंगे, भोजन की हो, तन मन धन समय, किसी भी चीज से संबंधित हो, वो माया के रूप हमें परेशान करेंगे। इसीलिए अब हमें उन पर विजय प्राप्त करते हुए जाना है, समय भी होता जा रहा है, और समय के साथ साथ हमें और क्या करना है, अब हमें ऐसा अनुभव करना है कि किस रीति से कि किसी भी तरह हम व्यर्थ को समाप्त करते हुए चलें, और व्यर्थ समाप्त होगा तो समर्थ हम बन सकेंगे। अब व्यर्थ को समाप्त करने के लिए और हमारी क्या आवश्यकता है, बाबा ने बताया। अब बाबा को अंत समय है, बाबा ने जैसे कहा हरेक से इतना प्यार हो, किसी से भी दुश्मनी की तो बात ना हो। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है ना, सुना होगा आपने कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हमारा भी बैर की बात तो दूसरी रही, सबसे अनन्य मित्रता होनी चाहिए। मित्रता माने प्यार स्नेह, और जितना ये प्यार और स्नेह होगा वो ही प्यार और स्नेह जो है अंत समय सतयुगी दुनिया में तभी सभी आत्माओं से प्यार हो सकेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि आवश्यकता यही बात की है, और इसमें अंतिम समय के लिए हमें और एक और पुरुषार्थ करना है जो बाबा ने किया। बाबा ने मुरली चलाई अंतिम दिन, और बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, बस बाबा विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने कभी भी यज्ञ में यूज नहीं किए, छुट्टी या विदा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये कह के बाबा जाते थे। विदा लेता है, छुट्टी लेता है, ये बाबा ने 18 जनवरी की रात को ही क्लास के बाद करे, और बाबा कमरे में गए और बस बच्ची यहाँ प्रकाशमणि दादी भी पीछे पीछे उनके गए, और दादी ने बस वहाँ पर बस बाबा ने कहा बच्ची बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो हम एक बात बताते हैं किस तरीके से कि दादी ने डॉक्टर को लेने के लिए जमुना प्रसाद भाई को भेजा, और हम ऊपर टहल रहे थे हिस्ट्री हॉल की छत पर, हमने ऊपर से कह रहे अभी इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा को हार्ट में पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाने जा रहा। तो मैं भी ऊपर से नीचे आया, और बाबा का जो कमरा है ना वह पीछे की तरफ से ही रास्ता था, इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, पलंग जितना था, जितना पलंग पड़ा हुआ है, और उतने तक वहाँ पर हमने भी देखा। जस्ट बाबा के यहाँ नैन मुलाकात बाबा दादी से कर रहा है, दादी के हाथ में हाथ, सारी शक्तियाँ जैसे विल करी। हमें भी ये दृश्य देखने का सौभाग्य थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद हम तो चले आए, डॉक्टर भी आया और डॉक्टर ने तो फिर डिक्लेयर ही कर दिया कि अब कुछ नहीं है। तो इसका भाव क्या है बताने का कि अंत समय हमारा भी कर्म भोग और योग बल की युद्ध चलेगी। शुरू में कर्म भोग ज्यादा स्ट्रांग होगा, कमर का दर्द होगा, घुटने का दर्द होगा, बुखार होगा, कोई ना कोई शरीर की बड़ी से बड़ी व्याधि होगी, तकलीफ होगी। लेकिन धीरे 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 हमने योग बल जितना कमाया होगा, योग बल बढ़ता जाएगा, कर्म भोग कम होता जाएगा और कर्म भोग के ऊपर पूरा विजय प्राप्त करके आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तो ये एक आवश्यक है। और इसके साथ साथ लास्ट जो है, बाबा बस उसके बाद गए और बाबा का शरीर रखा रहा, 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया बाबा का। लेकिन बाबा स्टिफनेस तो आई, शरीर तो अकड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बाबा को स्नान कराया था, कपड़े पहनाए और सब। लेकिन उसके बाद भी देखा कि बाबा का शरीर में उतनी स्टिफनेस नहीं थी, नहीं तो शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है, जैसे सबका अनुभव है, सबने देखा सुना होगा। लेकिन बाबा का शरीर जैसे फिर भी काफी हद तक फ्लेक्सिबल था। ये इस बात का प्रतीक है कि बाबा ने ये 5 तत्वों के बने शरीर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। हमें भी अपने ही 5 तत्वों के शरीर पर भी विजय प्राप्त करके जाना है। तो ये जो माया के ना ऐसे ऐसे बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये माया है, लेकिन होगी वो माया। किसी से बहुत स्नेह, बहुत प्यार, जो बाबा ने कहा ना, सबसे किसी से वैर नहीं, जो कबीरदास जी का बताया, अंत समय में हमारा भी ऐसा ही होगा, सबसे बराबर का स्नेह होगा, न किसी से ज्यादा न किसी से कम। अगर थोड़ा भी ज्यादा कम हुआ ना तो क्या होगा, फिर तो ज्यादा कम हुआ तो फिर तो अंतिम समय के हिसाब से किसी से वैर हुआ थोड़ा बहुत, किसी से ज्यादा स्नेह हुआ, और ये तो अंत में आत्मा को फिर जो है संपूर्णता, जो बाबा कहता है कोई भी याद ना आए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, शरीर को वो याद आता है या तो जिससे अति स्नेह हो वो याद आता है, या जिससे थोड़ी दुश्मनी हो, कहा सुनी हो, वैर भाव हो, वो याद आते नहीं, सबसे बिल्कुल एक समान। ये अंतिम समय का लक्षण जो बाबा का दिखा। और बाबा फिर उसके बाद तो चले गए, और उसके बाद तो हम सब जानते हैं बाबा ने किस प्रकार से अपने अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। तो ये जो बात आएगी, लगेगा हमें कि ये माया का रूप नहीं है, लेकिन होगी वो माया का रूप सूक्ष्म में। और इस तरह करते हम लोग चलेंगे। समय हुआ है, अब तो मैं छुट्टी लेता हूँ, थोड़ा डेविएट कर गया, लेकिन ये बेंजी ने खास कहा था, ममा का भी अंत समय का आपको बताया कि ममा ने भी जब शरीर छोड़ा तो परम धाम नहीं जा सके, और अभी तक भी 60 वर्ष से ज्यादा हो गए। बाबा ने भी शरीर छोड़ा, और बाबा ने भी एक ही आत्मा है जो अभी तक कर्मातीत बनी, वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तो इसीलिए हमें आपको सबको बनना है ऐसा ही, और ब्रह्मा बाबा की तरह ही। बस अंतिम समय की बात भी मैं बताऊं, कर्मातीत अवस्था की आत्मा का एक लक्षण और होता है। क्या? आत्मा बैठे बैठे ना, मैं भी क्लास सुन रहा था, 18 जनवरी को बताया आपको, आ गया था 17 जनवरी को, तो बाबा क्लास बता रहे सुना रहे थे, मुझे मन में आया बाबा कुछ बोले जैसे। अब हम सब तो भक्ति आए, भक्त इन द सेंस कि द्वापर युग से तो श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों में और दूसरे सब रीति से हम लोगों ने वंदना की है, पूजा की है, तो इसीलिए ये अंतिम जो है हमारा समय जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, उस समय हमारे मन में कोई भी बात अगर आएगी भक्त के मन में, तो जो भी उसका इष्ट देव होगा भगवान, वो इष्ट देव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा ही करेगा। तो इसीलिए वो भक्त ने बस मन में इच्छा हुई, बाबा ने भी महावाक्य उच्चार दिए। अब अपना ही कहना कोई बहुत शोभनीय प्रतीत नहीं होता, लेकिन बाबा ने कहा देखो ये बच्चा मोहन है, हाँ बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और अंत समय तक संपूर्ण बन जाएंगे। भगवान का ये भी वरदान प्राप्त हुआ कि संपूर्ण बन जाएंगे। तो बस ये आप सब लोगों को भी वरदान प्राप्त है, संपूर्ण सबको ही बनना है। हम तो सामने बैठे थे इसीलिए बाबा ने नाम लेकर बोल दिया, लेकिन आप लोग भी अगर होते उस समय ज्ञान में तो आप लोगों को भी यही वरदान मिल जाता। तो इसीलिए इन सब के लिए हम सब लोगों को इससे बढ़िया खुशी की और कौन सी बात होगी। आज भी बाबा ने कर्मातीत के ऊपर पूरी मुरली ही चला दी, तो इसीलिए आज की मुरली का भी देख के तो हम सभी को कर्मातीत संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना ही बनना है, और बाबा है इसीलिए बाबा का वरद हस्त हम सबके सिर पर है ही है, और हम सबको विजयी होकर बाबा के साथ जाना ही है। ओम शांति, ओम शांति।
अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।
हम सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। सभी खो गए थे साकार बाबा मम्मा की यादों में।